نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زيدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 سے 108 تک کریں گے.
آج کے لیسن میں کچھ کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سمجھنے کی ہماری پریکٹیکل لائف سے متعلق، اور جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے، آیت نمبر 102 سے 108 ہم پڑھیں گے، موضوع تو وہی چل رہا ہے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ یہود کس طرح، بنی اسرائیل کس طرح شرارتیں کرتے تھے، کیا ان کا بیہیویئر کیا تھا، انہوں نے کیا 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 اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں بھی کیا کرتے تھے. تو ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے ہم کیا کریں اگر وہ یہ کرتے تھے تو پرانے لوگ ہو گئے. What do we have to do with it? یہ ہم سے سوال ہے نا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو بعض دفعہ جو ریڈر ہوتا ہے وہ اس کو irrelevant سمجھتا ہے اپنے لیے کہ what do I care اگر بنی اسرائیل ایسے کرتے تھے. تو میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ چونکہ بنی اسرائیل پچھلی امت مسلمہ تھی، پچھلی چوزن امہ تھی. اس کو ایک دفعہ سمجھ لیں نا، بار بار یہی چیز آئے گی تو آپ لوگوں کو پھر انٹرسٹ قائم رہتا ہے اگر پتہ چلے کہ کیوں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، کہ وجہ کیا ہے. تو جیسے ہمیں بتایا گیا، آپ بریکٹ دیکھیں گے شروع کے اندر بھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ والی آیت آئی. پھر اس کے بعد جہاں پہ ان کا ذکر ختم ہوگا وہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ دیکھیں یہ دوبارہ یہی آیت آئی، اور اس کے بیچ میں سب ان کا ذکر ہے. تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے انہوں نے ایسا ایسا کیا، اب دیکھو تم ایسا مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسا کرنے کے بعد کس جگہ پہ پہنچے، مغضوب علیہم کی. اور سورہ فاتحہ میں ہم دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں مغضوب علیہم نہ بنانا، ان کے راستے پہ نہ چلانا. ان کا راستہ کیسا تھا؟ اگر پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کرتے تھے تو کیسے ان کے راستے سے بچیں گے؟ تو وہ ایک ایک ان کی بات کھول کے بتائی جا رہی ہے تاکہ ہم ان کاموں سے بچیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم شاید سمجھ ہی نہ پائے اتنی امپورٹنٹ سورہ کو، جو قرآن کی کوہان ہے، جو قرآن کے جو سب سے لمبی سورہ ہے قرآن کی، جس میں سارا خلاصہ ہے پورے قرآن کا، اسی سورہ کو ہم سمجھ نہ پائے اور جاننے کے باوجود اسی ٹریک کو فالو کرنے لگے جس کو انہوں نے کیا تھا. ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، آیت نمبر 101 میں، کہ رسول ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، انہوں نے ان میں سے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا. پیچھے پھینکنا ایک بات بتائی گئی، سمبل یہ مطلب نہیں کہ اٹھا کے پیچھے پھینک دیا فزیکلی، یہ ان کا جو بیہیویئر تھا نا اس کو ڈیپکٹ کیا گیا کہ ان کا بیہیویئر کیا تھا، یہ انہوں نے اگنور کر دیا اس کو، بالکل اس کو توجہ نہیں دی، جیسے کہ ہمارا بھی آج کل یہی حال ہے. تو اسی طرح انہوں نے کیا تھا. لیکن جب بھی کوئی امت، چوزن امت، اللہ کے کلام کے ساتھ ایسا کرے گی نا تو پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی چیز تو ظاہر ہے اس کی جگہ لے گی. اللہ کے کلام کو چھوڑا تو اس کے بعد کوئی اور چیزوں میں پڑ جائیں گے، کسی خرافات میں، اور یہی ہوا ان کے ساتھ. اور آپ دیکھیں گے کہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، جب اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا گیا تو اس کے سبسٹیٹیوٹ کیا بنا، وہ یہی چیزیں ہیں. تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 102 سے، اب آپ کو ربط سمجھ آیا کہ پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا کنیکشن ہے. پورے قرآن میں آیات کا ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن ہے، ایررلیونٹ نہیں ہے کہ ایک بات ہے پھر ایک دم ہی کوئی اور بات، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ پیچھے سے تعلق ہوتا ہے. تو ہم نے سمجھ لیا کہ جب ان کا رویہ کتاب کے ساتھ ایسا ہوا تو کیا ہوا پھر، جب انہوں نے کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا نا तो फिर किस डिच में वो गिर गए, किस गड़े में गिर गए, देखते हैं। वत्तबाऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और पैरवी करने लगे, इत्तेबा करने लगे, फॉलो करने लगे वो किस चीज को, उसको जो पढ़ते थे शयातीन अला मुल्क सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत में, उनके रूल में। एक तो ये माना है किया, और दूसरा भी एक और माना भी मुफस्सरीन ने किया है, वो ये किया है कि तत्लू से मतलब यहाँ पे कि पढ़ते थे शयातीन अला मुल्क सुलेमान, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर इफ्तरा बांध के, ये समझ के पढ़ते थे कि इस इल्म से सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कायम हुई, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो इतना इक्तदार मिला, वो उड़ते फिरते थे, हवाएं उनकी जो है ये मुसख़र कर दी गई थी, जिन्नात उनके हाथ में उनके काबू में थे, परिंदों की बोलियां वो बोलते थे, इतनी बड़ी बादशाह ये कैसे उनको मिल गई। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इस तरह से मिली है कि वो भी जादूगर थे, अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो भी जादू के जोर से उन्होंने ये सब किया। ये बात इसका पीछे क्या, थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ये जादू का चर्चा बहुत चल गया था, जिन्नात शयातीन जो है आसमान से बातें लाते थे और अपने साथ झूठ सच मिला के और फिर काहिनों को बताते थे, काहिन लोगों को बताते थे, तो उनके उन बनी इसराइल की ना दिलचस्पी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में हो गई थी। ये सब देख के सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी सब किताबों को जमा किया जिनमें ये जादू टूने कहानत और ये बातें थी, और इनको एक संदूक में रख के अपनी कुर्सी के नीचे दफन कर दिया और हुक्म दिया कि खबरदार आज के बाद मैं ये बात किसी से ना सुनूं कि जिन इल्मे गैब जानते हैं, जैसे आज हमारे भी दिमागों में पता नहीं जिन्नात से जाके पूछा जाए तो वो उनको गैब की बातें बताएं, और अगर मैंने कभी किसी से ये बात सुनी तो उसको उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात हुई तो जो खजाना, ये जो चीज़ें बुक्स थी, ये जो इल्मे नजूम की बातें थी, ये जो दफन था इनकी चेयर के नीचे, तो एक शैतान आदमी की सूरत में बनी इसराइल के लोगों के पास आया, कहने लगा मैं तुम्हें ऐसा खजाना ना बताऊं जिसे तुम लोग तमाम उम्र खा नहीं सकोगे, इस कुर्सी के नीचे से खोदो। लोगों ने खोदना शुरू किया, वो शैतान अलग जा खड़ा हुआ। वजह ये थी कि कुर्सी का ये खासा था कि जो शैतान उसके पास आता था फौरन जल जाता था, तो लोगों ने उस जगह को खोदा और वो तमाम किताबें निकाल ली। शैतान ने कहा देखा अब तुम्हें पता चला किस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम हुकूमत करते थे, जिन्नों पे, इंसानों पे, परिंद पे, इसी के जरिए तो करते थे। तो लोगों के अंदर क्या बात मशहूर कर दी कि वो भी जादू के जरिए ये सब पाया था उन्होंने, उनको भी जादू के जरिए मिला था। तो अब ये लोग बनी इसराइल के किसके पीछे पड़ गए, ये इन्हीं चीजों के पीछे जिनको शयातीन पढ़ते थे, शयातीन के ये काम थे, यानी जादू कहानत ये वो चीजें। अच्छा अब यहाँ पे ये एक जुमला मोतरजा आता है, यानी मोतरजा जुमला क्या होता है कि जैसे कलाम करते करते कोई रोक के कहे आप सीधे होके बैठे और उसके बाद फिर अपनी बात शुरू करते, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे वमा कफर सुलेमान से लेके अन्नास सिहर तक ये जुमला मोतरजा है, यानी यहाँ पे बात आई ना सुलेमान अलैहिस्सलाम की, तो बात को कट करके पहले ये कहा गया वमा कफरा सुलेमान, क्योंकि इनके दिमागों में ये था कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जादू करते थे, तो कहा गया हालांकि नहीं कुफर किया था सुलेमान ने। और यहाँ पे कुफर से मुराद क्या है, कुफर का वो तो कोई बुतों की पूजा तो नहीं करते थे, जादू मुराद है, वो उनके दिमागों में था ना कि ये वो जादू करते थे, तो कहा गया कि नहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं कुफर किया, उन्होंने कभी जादू नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपने नबी की बरात पेश की कि वो इससे बरी हैं, लेकिन किसने किया, वलाकिन न शयातीन कफर, शैतानों ने कुफर किया, ये जादू टूने करते थे, युअल्लिमून अन्नास सिहर, लोगों को तालीम देते थे जादू की, अच्छा, शयातीन से मुराद सिर्फ जिन्ना शयातीन नहीं है, पहला शयातीन से मुराद तो जिन शयातीन हो सकता है, लेकिन दूसरे शयातीन से मुराद जिन और इंसानों में भी तो शयातीन होते हैं। इंसान यानी ये नहीं कि वो शैतान बन जाते हैं, मतलब ये कि उनके अंदर वो सिफात आ जाती हैं शर की जो शैतानों के अंदर, यानी इसीलिए कभी बच्चों को आप कभी ये ना कह रहे हैं बड़ा शैतान है, अस्तग़फ़िरुल्लाह, कितनी बुरी बात हम बच्चे को कह रहे होते, इसे पनाह मांगनी चाहिए। तो शरारती कह दें, शैतान ना कहें, शैतान तो बहुत खबीस मखलूक है। तो जो इंसानों में से भी शैतान बन जाते हैं, यानी वो ही काम करने लगते हैं जो शैतान करते थे, तो वो उन्होंने जादू किया और वो लोगों को भी जादू सिखाते थे। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मेरे नबी ने, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं जादू किया, ये शयातीन करते थे जादू, और नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम का लगा दिया। तो जब उनका नाम आया सुलेमान अलैहिस्सलाम का, तो बात काट के पहले ये बात बताई गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये कहते थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इफ्तरा बांध के हम तो वो करें, जैसे नहीं होता कि किसी ने कोई गलत काम करना हो तो फलां भी करता है ये, आपको क्या पता, वो तो कुछ बड़े बंदे का नाम लगा देते हैं ताकि इनकी भी बात ऑथेंटिक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आज भी कहते हैं ना सुलेमानी टोपी, पता नहीं क्या क्या लोहे सुलेमानी और क्या क्या चीजें, ये जादू वाले लोग, अस्तग़फिरुल्लाह, जबकि कुरान कहता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई ताल्लुक नहीं जादू से, तो ये फिर भी ये जादू वाले लोग आज तक उनका नाम यूज करते हैं। तो इसी तरह जैसे कोई और गलत काम करना हो तो किसी बड़े बंदे का जो बड़ा मशहूर हो, कि आपको पता है वो भी ऐसा करता है, अब क्या होगा, अच्छा वो भी करता है, लोग ये सुन के सोचेंगे कि नहीं ये तो फिर अच्छी बात होगी जो वो इतना बड़े लोग भी कर रहे हैं। तो अब इन्होंने जब अपनी बात को ऑथेंटिक करना, तो कह रहे हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादू करते थे, पता है ये जादू से ही उन्होंने लिया था सब कुछ। तो वो पीछे पड़ गए किसके, कौन पीछे पड़ गए, बनी इसराइल, किस चीज के, मा ततलु शयातीन, जो पढ़ते थे शयातीन, जो चीजें जादू तलिस्मात टोने टूट के ये सब चीजें, उन चीजों के पीछे पड़ गए सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लगा के। और अल्लाह ताला ने बरात पेश कर दी सुलेमान अलैहिस्सलाम की और बता दिया कि शैतानों ने कुफर किया, यानी कुफर से मतलब यहाँ पे आप क्या लेंगे, वो वाला कुफर नहीं, शिर्क वाला वो वाला नहीं, बल्कि क्या लेंगे, जादू, और वो तालीम देते थे लोगों को जादू की। वाह माँ, अब ये देखें ये और किसके पीछे पड़ गए, ये जो माँ पीछे था ना, ये ही आगे कंटिन्यूशन। अच्छा, अब इसको अगर ब्रैकेट कर दे, वमा कफर सुलेमान वलाकिन शयातीन कफर युअल्लिमुन नास सिहर, इसको ब्रैकेट कर दे, तो फिर आपको बात समझ आएगी। वत्तबाउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्के सुलेमान वमा, आगे क्या बात है, अब पिछली बात ही अब कंटिन्यू हो रही है। वमा उनज़िला अलल मलकैनि, और जो नाजिल किया गया था, ये समझने के लिए सिर्फ आपको कह रही हूं कि आपको समझ आए कि वो जो आयत का टुकड़ा है वो क्या बता रहा है, और असल यहां से मौजू जो है कंटिन्यू वो ये हो रहा है, वो किस किस के पीछे पड़ गए, जो शैतान पढ़ा करते थे तो उसके दौर में, सुलेमान अलैहि सलाम के दौर में, और जो नाजिल किया गया था अलल मलकैन, दो फरिश्तों पे, भी बाबिल हारूत व मारूत, बाबुल में, बाबुल क्या था, इराक का एक शहर था, उसका नाम बाबुल था, बेबलोनियन, ये आप पढ़ते भी इंग्लिश में बेबलोनिया कहते हैं, उसमें जो दो मलक कहीं, देखिए आपका मलक क्या होता है, एक वाहिद है, अच्छा मलाइका आप पढ़ते हैं वो क्या है, जमा, मलकैन, देखिए आप दो की जब बात आती है ना, या नून से पहले जबर आवे, तो दो फरिश्तों पर, वो दो फरिश्ते कौन थे, हारूत और मारूत, ये उनका नाम था। अच्छा, इनकी क्या हिस्ट्री थी, इनकी क्या कहानी थी, आपको पता है तफसीरों में लिखी हुई है बहुत सारी चीजें, लिखी हुई है ऐसे हुआ ऐसे हुआ, उन्होंने लोगों पे लुक डाउन किया, तो बहर कैफ में उसमें जाना नहीं चाहती, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो इसराइली रिवायात से है, कोई भी उनके अंदर से ऐसी ऑथेंटिक स्टोरी नहीं है इनके बारे में जो के हदीस से हो, या कुरान पाक में भी, और इनका कुछ ऐसा जिक्र नहीं है सिवाय इसके कि ये बताया गया कि ये एज अ टेस्ट अल्लाह ताला ने भेजे थे। अब वो जो कहानियां, उनको आप कोई फायदा नहीं है उनको देखने का, क्योंकि हमें ये देखना कि असल बात क्या है। अच्छा, आप किस चीज के और पीछे पड़ गए, जो उन्जिल अलल मलकीनी बिबाबिल हारूता व मारूत, उस चीज के पीछे पड़ गए जो दो फरिश्तों पर नाजिल किया गया था बाबुल में, बाबुल शहर में। इसका मतलब दो फरिश्ते उतरे थे जिनका नाम हारूत और मारूत था, उनके पर नाजिल किया था। अब आपको मैं इतना इसलिए साथ साथ लेकर चल रही हूँ, इसको जरा गौर से इसलिए सुने, ये आयत ना थोड़ी सी आपको अंदर, ये लंबी आयत है ना, थोड़ी सी लॉस्ट ना आप हो जाए इसमें। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन तो बाद में बता दूंगी, लेकिन जब आप आयत को देखेंगे ना, तो आपको आयत से किसी को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आप कैसे आयत लेके और किसी को समझा सके ये आयत कैसे चल रही है। मफहूम तो इसका मैं अभी बताती हूँ आपको, पहले आप समझ लें कि किस चीज के पीछे पड़ गए थे लोग। अब वो क्या चीज थी जो नाजिल हुई मलकैन पे, जो बाबुल में थे वो मलकैन जिनके नाम हारूत और मारूत थे, उनके ऊपर क्या चीज नाजिल हुई थी। अब बाज कहते हैं कि वो जादू ही था, बाज कहते हैं नहीं जादू नहीं, बाज मुफसरीन ने कहा है कि जादू नहीं था, बल्कि देखें ऐसे था जैसे, फॉर एग्जाम्पल अब आपको मैं समझाती हूँ, मसलन के देखें हिंदुओं का ये तरीका है, यहूद के ये तरीके हैं, ईसाइयों के ये तरीके हैं। अब किस लिए समझा रही हूँ कि भाई आप इन तरीकों को नहीं फॉलो करना, ये गलत तरीके हैं, लेकिन अगर कोई उठ के वही तरीके करने लगे, उनको तो समझाया इसलिए था कि भाई इससे बच के रहना, ये तरीके करते हैं वो, लेकिन कोई उन्हीं तरीकों को फॉलो करने लगे, बताने का मकसद ये नहीं था, और बताया गया कि भाई इनसे बच के रहना, और वो उसी के पीछे चल पड़े। तो यही ये लोग करने आए थे, ये लोगों को बताते थे कि ये देखो ये जादू के टैक्टिक्स वो करती हैं, ये जादू के तरीके करती हैं, लेकिन तुमने इससे बच के रहना है, तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं ये सारी चीजें ताकि तुम बच के रहो इनसे। वो लोग ऐसे करते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं, वो ऐसे चलते हैं, वो ये चीजें यूज करते हैं। और वह मा यो अली मानी मिन आहदिन, और नहीं वो दोनों सिखाते थे किसी एक को भी, वो दोनों सिखाते थे हारूत और मारूत किसी एक को भी नहीं सिखाते थे, हत्ता यकूला इन्ना मा नहनु फितना तुन, यहां तक कि वो दोनों कहते थे कि ये आजमाइश है, फला तक फुर तो ना तुम कुफर करो, यानी ये जो बातें हम तुम्हें बता रहे हैं ये ना हो कि तुम यही करना भी शुरू कर दो, तो इस इन चीजों से बच के रहना, ये टेस्ट है अब तुम्हारा, तुम्हें ये सब कुछ समझ आ गई है ना, तो अब इन चीज से तुमने बच के रहना है, ठीक है, ये एक बात ये समझ आ गई ना इस तरह। अच्छा दूसरे बाज मुफसरी ने ये भी लिखा है कि वो जादू के तरीके इनको पता थे और वो लोगों को इसलिए आए थे कि वो आजमाइश बना के भेजे गए थे, उनको चूंकि जादू के कई तरीके आते थे तो वो लोगों को कहते थे कि ये मत सीखो, ये सही नहीं है, इससे तुम कुफर तक चले जाओगे, लेकिन जो फिर भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाता था वो फिर इनसे ये जादू सीख लेता था, ये भी तफसीरों में लिखा हुआ है। लेकिन आपको ये बात बस समझ लेनी चाहिए कि जो कुछ भी इनके पास था वो एक टेस्ट था, बस टेस्ट था लोगों के लिए, इनके पास कुछ उलूम थे वो लोगों को सिखा देते थे, मगर कहते थे ये टेस्ट है, इसके मुताबिक ऐसे ये नहीं करना है तुमने, लेकिन लोग फिर वो ही काम करते थे। जैसे इब्ने कसीर में एक रिवायत लिखी गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी वफात के बाद एक औरत आई मदीना में, और उसको जब पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो बहुत रोने लगी, और तो उन्हें पूछा भाई क्यों रो रही है, तो उसने कहा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया था, तो मुझे किसी ने, मैं चाहती थी वो वापस आ जाए, तो किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम फलां जगह पे जाओ तो वहां पे तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी, उससे तुम्हारा हस्बैंड वापस आ सकता है। तो एक औरत मेरे पास आई दो कुत्ते लेके, एक पे वो खुद सवार थी और एक पे मुझे सवार किया, मुझे बाबुल शहर ले गई, और वहां पे ऐसे दो फरिश्ते लटके हुए थे, और उनसे मैंने कहा कि मुझे मतलब सिखा दो जो कि तुम्हारे पास है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, बेहतर है कि तुम ये मत, तो उसने कहा नहीं मैं तो सीखूंगी, तो उन्होंने कहा फिर जाओ फलां तंदूर में जाके और तुम उसमें पेशाब करके आओ, तो वो गई, लेकिन उसके दिल नहीं माना और वो वापस आ गए और उनको कहा अब मैंने कर दिया वहाँ पे पेशाब, तो उन्होंने कहा फिर तुमने क्या देखा, तो उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं नजर आया, उन्होंने कहा तो तुम झूठ बोलती हो जाओ फिर, जाओ जाके पेशाब करके आओ। फिर गई वो वहां पे, फिर हिम्मत की, लेकिन उससे नहीं हुआ। फिर वापस आके उनको कहती मैंने कर लिया। हमने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, तुम बताओ तुमने क्या देखा। जब कुछ भी नहीं देखा तो इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। तुम जाओ जाके उसमें पेशाब करके, और जब तक उसमें नहीं करोगी उस वक्त तक नहीं तुम्हें वो चीज मिल सकती। वो गई फिर, अब इस दफा थर्ड टाइम उसने जाके पेशाब किया और उसने देखा कि कोई चीज है जो निकली है और ऊपर आसमान की तरफ चली गई। तो जब आई और उन्होंने पूछा कि हाँ तुमने किया है, कहने लगी हाँ। उन्होंने कहा क्या देखा, उन्होंने कहा इस तरह से एक चीज निकली और ऊपर आसमान को चली गई। उन्होंने कहा बस वो तुम्हारा ईमान था जो चला गया, अब तुम जो भी कहोगी ना वैसे होता जाएगा। तो अब क्या हुआ कि वो आई और उसने उसको टेस्ट करने के लिए एक दाना डाला, उसको कहा उग जा तो वो उग गया, उसको कहा तुम पक जा तो पक गया, उसको कहा इससे आटा बन जाए तो आटा बन गया, रोटी बन जाए तो रोटी बन गई। तो वो बहुत पछताई, उसको पता चल गया मेरा ईमान चला गया। तो अब रोती धोती वहां पहुंची मदीना पे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछे। जब सहाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि अब यही है कि तुम तौबा इस्तगफार करो और अपने वालदैन की खिदमत करो और बस यही तुम्हारा हो सकता है। क्योंकि सहाबा भी बहुत एहतियात करते थे कोई भी फतवा देने में। तो बहर क्या, ये एक रिवायत इब्ने कसीर में लिखी थी, एज इट इज़ मैंने आपके सामने बता दी है, आप पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि यानी जो कुछ भी इनके पास था ना इल्म, हारूत और मारूत के पास, वो एक टेस्ट था। और उन्होंने कहा था कि ये वो बताते थे लोगों को सिखाने से पहले कि ये एक टेस्ट है, तो तुम ना तुम कुफर करो। अब जो मैंने आपको पहले बात बताई कि उनके पास कुछ अच्छी बातें थी, कोई जिक्र अजकार थे, कोई रूहानी चीजें थी, वो भी हो सकती है कि उसको उल्टा यूज ना करना। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि हम इसी इस तरह से लोग जादू करते हैं, लेकिन तुमने करना नहीं है, ये तुम्हें इसलिए समझा रहे हैं, बता रहे हैं। तीसरी ये भी चीज हो सकती है कि जादुई के कलिमात उनके पास थे जो वो लोगों को सिखा देते थे, लेकिन उनको ये पहले कहते थे तो मत सीखो, ये मत सीखो तुम्हारा ईमान चला जाएगा, लेकिन अगर लोग जोर दे रहे हैं तो वो उनको सिखा देते थे। फयतअल्लमूना, तो वो सीखते थे। सोचिए इनके जवाल की इंतहा क्या है, हो गई थी। अब आपको पता है ये कौन सा दौर है बनी इसराइल का? अभी मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, यूशा बिन नून फौत हो चुके हैं, दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया वो भी गुजर चुका है, ये बनी इसराइल का वो दौर चल रहा है उनके बाद का। ठीक है, तो हम पास्ट हिस्ट्री जो हम पीछे पढ़ रहे थे ना कि वो लेके उनको फिरौन से निजात अल्लाह ताला ने दी और वहां से निकले, और वो वाला दौर की बात नहीं हो रही, ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद की दौर की है। तो वो उनकी हद ये थी कि बजाय अल्लाह की किताब को सीखते, उसको तो पीठ पीछे डाल दिया था। और कर क्या रहे थे, फय्यतअल्लमूना, तो वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से, किन दोनों से, हारूत और मारूत से, मा युफर्रिकूना बिही बैनल मरई व ज़ौजी, जो चीज तफरीक डाल दे दरमियान मर्द के और उसकी बीवी के, वो वाला जादू सीखते खास तौर पे, जो सबसे ही बुरा जादू। बाकी भी जादू बुरे ही हैं, लेकिन ये सबसे ही बुरा है जिसमें मियां बीवी के दरमियान तफरीक डाली जाती है, उस वाले जादू को सीख। अब सबसे पहली तो बात ये कि क्या जादू जायज है? क्या जादू एक वो चीज है जिसको सीखा जा सकता है या सिखाया जा सकता है या किया जा सकता है या कराया जा सकता है? देखिए ये हम बैठे हैं ना यहाँ पे, जब हमारे सब चीजें चल रही हो ठीक ठाक, तो फिर शायद शायद इतना कोई हमें ना इसकी जरूरत हो। लेकिन बाज दफा जब हसद में इंसान जलने लगता है, या जब इंसान की कोई बहुत शदीद ख्वाहिश होती है जो उसको होता है कि बस ये पूरी हो जाए, तब वो जादू के पीछे जाता है। जब सब ठीक चल रहा होता है और कुछ ऐसा मसला नहीं है तब नहीं। तब जादू के पीछे जाने के पीछे साइकी क्या होती है, वो ये होती है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं कि भाई जादू है क्या चीज। अच्छा, इमाम जोहरी कहते हैं कि जादू एक ऐसा काम है जिसमें शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और उसकी मदद से होता है। अभी आया ना तत्लु शयातीन, वो शैतान पढ़ते थे उसको, शैतानों की ये चीज है। जादू की असलियत ही है कि किसी चीज की हकीकत को डिस्टॉर्ट करके उसके उलट जाहिर किया जाए। यानी बेसिकली जादूगर क्या करता है, वो बातिल को हक दिखा देता है लोगों को। जो जैसा होता है उसके बिल्कुल उलट उसकी चीज दिखाता है। इब्ने कुदामा कहते हैं कि ये जादू झाड़पूंख से होता है, अल्फाज से भी होता है, लिख के भी होता है, और जिन के जरिए से कोई ऐसा काम कराया जाता है जो जिसके ऊपर करना होता है, उसके जिस्म या उसके दिल दिमाग के ऊपर कुछ असरात डाले जाते हैं, और उसके जरिए से बाज दफा, मैं एक्सट्रीम केस में आपको बता रही हूँ, इंसानों को कत्ल भी किया जाता है। एक वो भी जादू है जिसके जरिए इंसानों को बीमार कर दिया जाता है, यानी अभी इंसान हर जगह जा रहा है, कोई वजह ही नहीं समझ आ रही कि उसको हुआ क्या है, और अचानक बैठे बैठे एक चीज हो गई, मेडिकली कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि नहीं ये लोग पकड़ सकते, ऐसी बात ही, सभी जादू नहीं होते। एक तो हम हर वक्त ये भी वहम में ना पड़े रहे कि बस मेरे ऊपर किसी ने जादू कर दी, 90% ऑफ द टाइम जादू नहीं होता, लेकिन बस हमें लग रहा होता है मेरे ऊपर जादू हो गया। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन होती है एक किस्म जिसमें इंसान को बीमार कर दिया जाता है, एक वो भी किस्म है जिसमें आदमी को नामर्द कर दिया जाता है, कि वो अपनी बीवी से कोई ताल्लुक रखने के काबिल नहीं रहता, और एक वो भी किस्म है जिसमें मियाँ बीवी में अलहदगी पैदा कर दी जाती है, एक वो भी किस्म है जिसके जरिए एक दूसरे में दुश्मनी पैदा कर दी जाती है। और बनी इसराइल इस कदर उनके जवाल की इंतहा हो गई थी कि उस जमाने में क्या होता था कि जो मियाँ बीवी है ना, तो एक आदमी अपनी ये बहुत बड़ी बात समझता था कि मैंने उसकी बीवी को अपनी तरफ कर लिया, इसको बहुत बड़ा अपना कारनामा समझता था। नहीं तो क्या होता कि मियाँ बीवी को एक दूसरे की शक्ल बुरी लगने शुरू हो जाती, वही जो बहुत अच्छी लग रही थी अब वो इतनी बुरी लगती है कि वो उसके पास नहीं आना चाहता, बीवी को आदमी बुरा लगने लगता है, फिर वो जादू ऐसा करते हैं कि अब कोई तीसरा बंदा उस औरत को अच्छा लगने लगता है, या इस आदमी को कोई तीसरी और दूसरी औरत अच्छी लगने लगती है अपनी बीवी के सिवा, वो उसको ये जो कहते हैं ना, अस्तग़फिरुल्लाह, महबूब कदमों में, ये क्या है, हम समझते नहीं है ये क्या चीज है, महबूब कदमों में ये कितना बड़ा हराम काम को लाके, चाहे वो कोई कंवारी लड़की है, चाहे कोई शादीशुदा है, महबूब कदमों में आपके आ जाएगा, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं? कोई कोई शादी का तो नहीं बता रहे कि वो महबूब कदमों में, यानी किसी को इतना वो जादू उसके ऊपर करेंगे कि वो आपके कदमों में पड़ जाएगा, जिसको आप चाहते हैं कि वो आ जाए आपकी तरफ, उसके दिल में आपका ख्याल आने लगे, उसको आपसे मोहब्बत हो जाए, उसको अपना आदमी तो बुरा लगेगा तो ये अच्छा लगेगा, ये जादू के जरिए करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। आप याद एक बात रखें, और अफसोस है कि बाज दफा इंसान ना इस कदर किसी चीज के लिए डेस्परेट हो जाता है कि वो इन जगहों का रुख करता है, लेकिन आज मैं आपको वो बातें बताऊंगी, और इसलिए इतनी खोल के बताऊंगी कि आपको कम से कम ये समझ आ जाए कि पूरी जिंदगी के लिए कुछ भी हो जाए इन जगहों का नहीं रुख करना। देखिए, ये जिंदगी जो है ना एक टेस्ट है, इसमें अप्स एंड डाउन्स हैं, इसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो हमारी मर्जी के खिलाफ हैं, इसमें गम भी आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, मसले भी आएंगे, बहुत कुछ होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वल्लाहु मअस साबिरीन, अल्लाह सबर करने वालों के साथ। हम क्यों चाहते हैं जैसा मैं चाहती हूँ वैसा हो, मेरे बेटे की वहां शादी हो जहां पे मेरा मेरी मर्जी, अब चाहे उसको बीवी से तलाक कराऊं, मेरे जो घर के अंदर है फलां चीज ऐसे होनी चाहिए, फलां को औलाद नहीं हो रही, वो कहता है मेरी औलाद हो जाए, अब असल में जादू में कर क्या रहा है कोई, वो ये बता रहा है कि अल्लाह से तो नहीं मिला मुझे, मैंने तो बड़ी दुआएं की, नहीं मिला, उससे नहीं मिलता तो ना मिले, मैं जाके वो जादूगर से ले लेता हूँ, यही कहना चाहते हैं, है ना, मुझे यहां पे तो मेरी काम नहीं बन रहा, यानी वो क्या दिखा रहा है, ऐसे ही तो नहीं है, इसको कुफर कहा गया, कुरान इसको कुफर कह रहा है, किसी और ने नहीं कहा, कुरान कह रहा है ये कुफर है, यानी इंसान काफिर हो जाता है ये करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 7 मुहलकात बताए ना, तबाह करने वाले गुनाह, 7 वो काम कौन से हैं जो कबीरा गुनाह है, गुनाहों में भी कैटेगरीज है, गुनाहों में भी सब एक दर्जे के गुनाह नहीं है, 7 ऐसे गुनाह हैं जो बहुत टॉप के हैं, नंबर 1 शिर्क करना, नंबर 2 जादू करना या कराना, نمبر 3 پھر کسی کو نہ قتل کرنا، نمبر 4 سود خوری، نمبر 5 یتیم کا مال کھانا، نمبر 6 کفار کے مقابلے میں پیٹ پھیر کے بھاگنا، نمبر 7 پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا. یہ ہے 7 بگ سینز. بگ سینز بھی بہت سارے ہیں، لیکن بگ سینز میں بھی، کبیرہ گناہوں میں بھی ٹاپ کی کیٹیگری کے ہیں. تو کیا کرتے ہیں جب لوگ جادو ٹونوں کی طرف جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ یہ کتنے بڑے گناہ میں ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے اوپر بھروسہ اٹھ گیا، یعنی اللہ تو نہیں دے گا تو ہم کسی اور سے لے لیں. تو کیا کیا؟ کفر ہی کیا نا. اس کا مطلب کسی اور کو سمجھا کہ وہ اللہ نہیں بھی دینا چاہے گا تو کوئی اور دلا دے گا کیا؟ ہاں، کوئی اور کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اللہ نہیں دینا چاہتا لیکن وہ دلا دے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ تو کیا کیا کرتے ہیں شیاطین جو ہوتے ہیں نا، یہ جادوگروں کے ساتھ اصل میں ایک کانٹریکٹ ان کا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں، شیاطین جادوگر، انسان جو جادوگر ہوتے ہیں ان کی ایسے ہی ہیلپ نہیں کرتے، فری میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ جادوگروں سے کچھ کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی ہیلپ. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جنات کے ذریعے ہوتا ہے، جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب وہ جنات کو کیسے اپنے پاس لے کر آتے ہیں؟ ایسے بیٹھے بیٹھے تو نہیں جن آ جائے گا کسی کے پاس، کیسے لاتے ہیں پتا ہے آپ کو؟ جب آپ میں باتیں یہ بتاؤں نا تو آپ کو اتنی کراہت آئے گی. اور جو لوگ ایسے کبھی بھی کام کر چکے ہیں وہ اتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں جو جادوگر ہے نا وہ کام کرتا ہے جس سے پھر شیطان ہیپی ہو. شیطان سے مطلب وہ والا ایک شیطان کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن شیاطین جنات جو ہے نا وہ ہیپی ہوں. اب جب وہ خوش ہوں گے تو تب اس کی ہیلپ کریں گے نا، اس کی ساتھ دوستی کریں گے. پھر تو وہ پھر کیا کرتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے؟ قرآن پاک کو پاؤں میں لپیٹ کر قرآن سمیت ٹوائلٹ میں جاتا ہے. قرآن آیات کو غلاظت سے لکھتے ہیں، قرآن آیات کو پیریڈز کے خون سے لکھتے ہیں. ایسے قرآن کی آیات لکھتے ہیں اپنے پاؤں کے تلووں پہ، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کو الٹا لکھتے ہیں، نماز کو بغیر وضو کے پڑھتے ہیں، ہر وقت جنابت کی حالت میں رہتے ہیں. بعض وہ بھی ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام کے بجائے شیطان کا نام لے کے، پھر اسی ذبح شدہ جانور کو کسی ایسی جگہ پھینک دیتے ہیں جہاں پہ شیطان کہتا ہے، وہ جو ان کا جن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی یہاں پہ پھینکو. آپ نے دیکھا نہیں وہ کہتے ہیں بلی لے کر آؤ، کالا کبوتر لے کر آؤ، فلانا لے کر آؤ، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں منگواتے ہیں. وہ کالی ہی منگواتے ہیں کیونکہ کالا رنگ ان کو بہت پسند ہے. جن کے دل بھی کالے ہو گئے وہ کالے ہی کریں گے، جہنم بھی اندھیری ہے ایسوں کے لیے. اور جو ان کی خباست ہے وہ بھی اندھیر کالے ہیں، یہ دل کے بھی کالے اور ان کو یہی چیزیں پسند ہیں. پھر ستاروں کو پکارتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، پھر بعض دفعہ اپنی ماں یا بیٹی سے بدکاری کرتے ہیں، پھر جا کے کہیں یہ ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. ایسے بغیر کسی اس میں فری میں نہیں کر رہے ہوتے. جتنا زیادہ جادوگر کفر میں آگے بڑھتا ہے، ان غلیظ کاموں میں آگے بڑھتا ہے، شیطان اتنا ہی اس کا ساتھ دیتا ہے اور اتنا ہی اس کے اشاروں پہ چلتا ہے. اور کیا ہوتا ہے جب یہ دوست بن جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی پہ دونوں اکٹھے ہو گئے. تو پھر وہ جو سردار ہوتا ہے، جو جنوں کا، جو شیطان کا سردار ہے اس قبیلے کا، وہ اپنے قبیلے کے کسی جن کو اس کی خدمت میں لگا دیتا ہے کہ اس جادوگر کی تم نے خدمت کرنی ہے، اب وہ اس کا غلام ہے. کیونکہ اب اگر یہ اس کو چھوڑتا ہے تو پھر یہ جادوگر اس کی شکایت وہ بڑے والے لیڈر کو ان کے کرتا ہے، پھر وہ اس کو پٹائی لگائے گا یا اس کو مارے گا. اسی لیے بعض دفعہ یہ سچے واقعات ہیں، بعض لوگوں کے اندر جب یہ جن آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے نہیں نکلنا، اس لیے کیونکہ اگر ہم نکلے تو وہ ہمیں مار دیں گے، نکلنے سے انکار کر دے. تو یہ جادو کر کے اب کنٹرول میں آ گیا جن، اس نے اس کی خدمت میں دے دیا کہ یہ اب تمہاری خدمت کرے گا. اب یہ جادوگر جو مرضی سے کام کرتا ہے، کبھی کسی کے اوپر ڈال دیتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی ایک سے زیادہ بھی وہ جن دے دیتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جادوگروں کے چہروں کے اوپر نحوست ہوتی ہے، ایک نحوست. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کی ان کی لائف ہوتی ہے. اگر وہ اتنا ہی، یہ ٹی وی میں کبھی ایڈز دیتے ہیں کہ آپ کے کام 24 گھنٹے میں ہو جائیں گے، वो खुदा का खौफ करो, हर मसला हल हो जाएगा। मुझे बताएं, खुद आप कॉमन सेंस अपनी यूज करें कि इस जमीन के ऊपर जो बेस्ट इंसान चले हैं वो कौन है? नबी अलैहिस्सलाम। उनके पास तो कोई ऐसा टोटका नहीं था जिससे वो 24 आवर में अपने काम करा लेते। आयशा रजी अल्लाह तआला प्यारी बीवी है, उनके ऊपर तोहमत लग गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं है कि किसने क्या किया। यहूद आए सवाल पूछने के लिए, आपने फरमाया कि मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, कहना भूल गए। उनको तो नहीं जवाब आ गए, उनको तो नहीं, उनके तो नहीं मसले इस तरह से हल हो जाते थे? जो बेस्ट मैन, जो जिनसे ज्यादा अल्लाह से करीब कोई नहीं इंसान है, जो अल्लाह के महबूब, उनको तो कोई तरीके नहीं आया ऐसे। आप ये सोचते हैं इनके पास तरीके? और अगर उनके पास इतने ही तरीके तो पहले अपने तो मसले हल कर लें, फिर लोगों को ऐड दें, पैसे लगा लगा के इश्तिहार, पैसे लगते हैं इश्तिहारों पे, इश्तिहार देते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर आपको बुलाने की कोशिश करते हैं किसी तरह आ जाए, हर किस्म का मसला जी हम हल कर दें। तो ये तो कहाँ पहुंच गए, अस्तगफिरुल्लाह, ये अपने आप को खुदा कह रहे हैं? हर मसला हम हर यानी अल्लाह से तो दुआ करने की जरूरत नहीं, अल्लाह को पुकारने की जरूरत नहीं, बस इनके पास चले जाए, ये आपके हर मसले हल करेंगे, चाहे इमिग्रेशन का है, चाहे जॉब का है, चाहे कारोबार का है, चाहे महबूब कदमों में है, चाहे हस्बैंड नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, सब चीज का मसले का हल इनके पास है। तो ये इस तरह से लोगों को फांसते हैं, इस तरह से लोगों को अपने चुंगल में लेकर आते हैं। तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं जिससे कि ये उस जिन को अपने पास काबू करके फिर उसके बाद उससे फिर तरह तरह के काम लेते हैं। इसी वजह से जादूगर जो है ये, यानी ये जो जो इनको फांसते हैं इंसानों में से, इसकी सजा क्या बताई गई है? कत्ल बताई गई है, कत्ल है इसकी सजा, इसके सिवा कुछ नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बदगुमान या कहानत पर यकीन रखता है या जादू करता है या जो जादू कराता है, कहानत समझते हैं ये जो होती है, यानी जो फॉर्चून टेलिंग, जो फ्यूचर की बातें बताना, आपके हाथ देख के, आप लकीरें देख के बता रहे हैं, अब कभी आपके सितारे देख के बता रहे हैं, अब नया एक टैरो कार्ड निकल आया उससे बता रहे हैं, पता नहीं क्या क्या इश्तिहार दिए होते हैं कि हम आपको बताएंगे। अच्छा अभी मेरा ये मसला है, मेरी जॉब कब होगी, इतने अरसे से जॉब नहीं, मैं फलाना सफर कब करूँ, या करूँ कि नहीं करूँ, आ जाऊँ कि नहीं, इस्तखारा तो भूल गए, सुन्नत को तो छोड़ दिया, उनकी जगह यही चीजें रह जाएंगी ना, जो मैं जैसे अभी आपको बताया है आयत के शुरू में, कि जब जिंदगी से सही दीन, कुरान, किताब, रसूल की बात ये निकल जाएगी तो फिर यही काम होंगे ना। इस्तखारे पे तो बिलीफ नहीं है, ना इस्तखारा कौन करे, फिर अब ये काम रह गए, बस जाके उन्हीं से पूछ लेते हैं शादी यहाँ पे करनी चाहिए या नहीं मुझे बेटी, वो भी बताएंगे हिसाब किताब लगा के। वो जो खाने बनाते हैं और उनके अंदर कई हरूफ लिखते हैं, कई नंबर्स लिखते हैं, ये जादू ही तो है। कई कहते हैं कि हम रूहानी इलाज करते हैं, रूहानी इलाज कह के, और उस अंदर क्या होता है, ये चीजें होती हैं। ये एक सच्ची बात है कि एक खातून मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस तरह हस्बैंड के, जो भी हर एक शादीशुदा औरत की तो यही मसले होते हैं, मेरे हस्बैंड इस तरह से मेरी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए अब मैंने इंडिया में किसी से रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया। मैंने कहा अच्छा क्या पढ़ने के लिए दिया? उन्होंने कहा बस, उन्होंने कहा या बुद्धू हो पढ़ो। मैंने कहा ऐसे नहीं हो सकता, वो या बुद्धू तो कहा होगा, आपको कुछ गलत फहमी लगता है हो रही है। कहा नहीं, यही कहा उन्होंने, मुझे अच्छी तरह पता। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, ये तो अल्लाह तआला का नाम नहीं है। अच्छा मेरे जहन में क्या है कि वो अस्माए हुस्ना पे से उन्होंने कहा दिया होगा कि अल्लाह तआला का नाम वदूद है, तो अल्लाह मोहब्बत पैदा कर। नहीं, ये नाम नहीं। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। वो कहने लगी मैं आपको लाके दिखाती हूँ। जब उसने लाके दिखाया तो या बुद्धू हो लिखा होता, ये किसका नाम है, किसको पुकार रहे हो, कोई जिन का नाम है, कोई शैतान का नाम है, किसका नाम है? मैंने कहा और बैठे बिठाए देखो लोग शिर्क कर रहे हैं, वो पुकारती जा रही या बुद्धू हो, या बुद्धू हो पढ़ रहे। पता नहीं उन्होंने कितनी दफा कहा था, ये तो मुझे अभी याद नहीं, मगर ये नाम लेना और इस नाम से पुकारना, ये भी नहीं पता किसको पुकार रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, और अंधाधुंध लगे हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बदशगुनी ली, वो भी कितनी आम है हमारे, ये बस आ गया, फलाने की वजह से ऐसा हो गया, नहीं फलानी तारीख को ना शादी करना वरना ये हो जाएगा, मुहर्रमों में ना करना वरना ऐसे, बस 13 तारीख को काम किया था तो होना ही नहीं था। यहाँ कहानत पे यकीन रखता हो कि किसी ने बता दी, नहीं जी फलाने उन्होंने कहा था मुझे, उन्होंने तो हिसाब लगा के बताया था, उन्होंने कहा था ये काम ना करना तो मैंने नहीं करना, फलां उन्होंने ये कह दिया था इसको पीले ही कपड़े पहनाना, फलां ने कहा था तुम कभी काले कपड़े ना पहनना वरना ये हो जाएगा, वो सारी जिंदगी बेचारी काले कपड़ा ही नहीं पहनते। जो यकीन रखता है ना इन बातों पे, या जादू करता है या जादू कराता है, या जो किसी काहिन के पास जाकर उसकी बातों की तस्दीक करता है, तो उसने नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार कर दिया। जिसने इनकार किया वो क्या हो जाता है, मुसलमान रहता है वो? और ये कितना कॉमन है, कहानतों पे यकीन करना, काहिनों के पास जाना, उनसे जाके पूछना, उसने कह दिया यहाँ पे ना रिश्ता करो तो नहीं करना, उसने कहा ये ठीक है ये रिश्ता आपके लिए बेटी के लिए सही है, इनका बिल्कुल सितारे मिल रहे हैं तो वहां पे कर लिया। अस्तग़फिरुल्लाही रब्बी, जब जाहिर है दीन को छोड़ेंगे कुरान को छोड़ेंगे फिर यही होगा, कोई तावीज़ दे दें जो बिरजे के गले में डाल दूं वो ठीक हो जाए, कोई ऐसा कुछ ऐसा जंतर मंतर कर दें कि मेरी नौकरी हो जाए, कोई ऐसी चीज कर दें कि ये मेरा काम हो जाए, फिर यही रहेंगे ना, फिर तो किताब को भी इसीलिए यूज करना है कि उल्टे लिख रहे हैं। देखिए वो हमने पढ़ा था ना कि इसी कुरान से लोग गुमराह होते हैं, उल्टा लिख रहे हैं उसको, उसी को पैरों में पर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, नाउज़ु बिल्ला कितनी इसकी बेहुर्मती कर रहे हैं, यानी फिर किताब भी इन इन कामों के लिए, जादू टूनों के लिए रह गई, सूरह फातिहा को उल्टा लिखना। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। तो ये जो जब जो फरिश्ते इनको आके सिखाते थे वो बताते थे कि किस तरह आपने इन चीजों से बचना है, जैसे अब मैं आपको तरीके बता रही हूँ, ऐसे ऐसे करते थे ऐसे करते थे, कोई एक तरीका ये कि किस तरह इसको हाजिर करते हैं, कई तरीके हैं उसके, जब जादूगर नापाक रहता है, जनाबत की हालत में रहता है, नापाक कपड़े गंदे कपड़े पहनता है, कुफरिया कलिमात अदा करता है, फिर अंधेरे कमरों के अंदर बैठ बैठ के ये वो आग जला के और डिफरेंट उससे काम करते हैं, फिर उनको बुलाते हैं, अब उस तरीके से ये उनको बुलाते हैं, अपने जिन्नात को हाजिर करते हैं, कभी आपको कहते हैं कि आप कोई मुर्गी या कोई कबूतर या ये लेकर आओ जो इस रंग की है, और फिर जाके वहां पे फेंक के आओ, वो उन जगहों पे फेंकवाते हैं जो जिन्नों का मस्कन होती है, फिर वो जिन्नात वहां से आके लेते हैं उन चीजों को, फिर उसके बाद घर आके अब भी खुश हो गया ना जिन्न उससे, तो आप शिरकिया कलिमात की रट लगा देते हैं, कभी कभी शुरू में कुरान पढ़ते हैं और उसके बाद शिरकिया कलिमात पढ़ते हैं, जो मुंह ही मुंह में पढ़ते रहते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता क्या पढ़ रहा है ये क्या कह रहा है, कभी सितारों को पुकारते हैं और कभी कुरान पाक की सूरतों को ना अलहदा अलहदा हरूफ में उल्टा लिखते हैं, यानी आखिर से शुरू तक फिर इस तरह से लिखते हैं, उससे फिर वो जिन्नात खुश होते हैं इन ऐसे कामों से, फिर वो आके इनको पूछते हैं कि आप अपना मकसद बताएं हम करते हैं वो आपका काम। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। अब जादूगर की पहचान कैसे होती है, एक तो ये बात याद रखें कि जब कोई आपकी माँ का नाम पूछे ना तो समझ लें कि ये जादू के साथ इसका कोई ताल्लुक है, क्योंकि जो जिसने कुरान से कोई आपको काम करके देना है ना, वो ये आपकी माँ का नाम पूछने से उसका क्या ताल्लुक है, माँ का नाम जो भी हो, कुराने पाक से भी दम होते हैं वो सही है, वो करने भी चाहिए, रुकिया करना चाहिए, लेकिन जो लोग माँ का नाम पूछे उनका मकसद क्या है, मकसद यही होता है कि उन्होंने जादू करना होता है। इसी तरह वो जो कोई ऐसी चीज मांगे कि जिसमें इंसान का पसीना लगा हुआ है, जैसे कोई कमीज है कोई रुमाल है, इसीलिए आप जब भी अपने कपड़े डोनेट करें ना तो कभी अपने पसीने वाले पहने हुए कपड़े ना डोनेट करें, उनको धो के फिर करें, आपको नहीं पता अगर कोई खबीसा इंसान हो और वो ये काम करता हो तो वो उसके ऊपर जादू कर सकता है जिसमें किसी का पसीना लगा हो, यानी आप पहन के उतारे हैं तो वो ना दे उस तरह। अच्छा इसी तरह अगर वो कोई जानवर मांगता है कि ये जानवर आप करके वहां पे फेंका है, वो कहते हैं ना वो खुद कुछ नहीं कहता, वो तो बस कहते हैं वहां पे सदका करके आओ, ये सदका हो रहा है, फलाना जानवर वहां पे जाके फेंक के आए ये सदका है, अच्छा, फिर जो कोई कुछ ऐसी चीजें लिखता है या पढ़ता है या ऐसी लाइंस लगा रहा है हिसाब वगैरह की, और उसमें डिजिट्स लिखता है, उसमें कुछ ऐसी चीजें लिखता है जिनकी समझ नहीं आती, तो फिर इसका मतलब है कि वो भी कोई ऐसी बात है जादू की। या कोई ऐसा कपड़ा देता है ऊपर लेने के लिए जिसमें आपको स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, उनमें हरूफ लिखे हुए, नंबर लिखे हुए हैं, खाने बने हुए हैं, ये भी जादू की पहचान है। या ये कहता है आपने बस इतने दिन अलग थलग रहना है, किसी से नहीं बात करनी, किसी से कुछ नहीं करना। और मुझे अफसोस होता है हमारे बैक होम मुल्कों में तो ऐसी चीजें, इन मुल्कों में भी आके लोगों ने यही शुरू कर दिया और इतना जबरदस्त कारोबार इसको बना लिया कि ऐश पे पैसे मिलते हैं, घर बैठे लोग आ जाते हैं ना, कुछ 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 करना है ना, कोई जाना है ना आना है ना, कोई दफ्तर खोलना है, बस घर बैठे ही मुरीद आते जा रहे हैं, अकीदतमंद आ रहे हैं। वो हमारी अकल मारी भी है कि हम अपनी ख्वाहिशात के ऐसे गुलाम है कि जैसे हम चाहते हैं बस वैसा हो जाए। अगर कोई बीमार है, क्या बीमार के लिए आपके नबी ने कोई दुआएं नहीं बताई आपको, कुछ गाइड नहीं किया, वो पढ़े नहीं, उनके ऊपर हमारा ईमान ही नहीं, उनको तो हम कुछ समझते नहीं, तो हम इन ऐसे लोगों के पास जाते हैं यहां से सेहत मिलेगी। फिर काम कारोबार या इसके अंदर कोई परेशानी है क्या, इसके लिए कोई चीज नहीं आपको बताई गई जो हम उन लोगों के पास जाते हैं, उनके पास से मिलेगा रिस्क, उनके पास इतनी पावर है, उनके पास पावर हो ना तो वो अपने मसले खुद पहले हल कर लो। एक लो इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है और उसका ईमान जा चुका होता है, उसको पता भी नहीं होता, वो अपने आप को समझता है मैं मुसलमान हूं, कुफर में एंटर हो चुका होता। कभी वो कहते हैं कि 40 दिन तक आपने पानी को हाथ नहीं लगाना, कभी वो कुछ कहते हैं कि ये चीजें ना आपने जमीन में जाके दफन करनी है, कभी आपको कोई जैसे कोई औरत है वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मुझसे मोहब्बत करने लगे, तो वो कोई उसको ऐसी चीज देते हैं जिसमें नजासत होती है या जिसमें कोई ऐसी ऐसी शिरकिया बातें पड़ी होती हैं जो उसको देते हैं, कभी उसके जो भी मरीज होता है उसका नाम, उसके शहर का नाम और जिस वजह से वो आया है वो बताते हैं, कि दूसरा बंदा कन्विंस हो जाए कि बस ये तो बहुत पहुंचे हुए हैं। और ये मैं किसी का नाम लिए बगैर वैसे ही आपको एक बात बताती हूँ, ये कोई अगर ऐसा आपको बताए ना तो समझ लें कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि ऐसे कोई किसी को नहीं बता सकता कि आपका नाम क्या है या आप क्या करते हैं या आपका क्या मसला है। हज पर, ये हज का वाक्य है, इस तरह के लोग ऐसे काम भी करते हैं। कोई थे जो कि किसी ग्रुप के मुअल्लिम थे, वो जब अपने साथियों के साथ टैक्सी में बैठे तो उन्होंने टैक्सी वाले को बताना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारा ये मसला है, ये तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स हैं, तुम इस चीज से गुजर रहे हो। और वो हैरान और परेशान और हक्का बक्का रह गया कि आपको कैसे पता, और ये सारी बातें तो ठीक है, समझ लें इसके पास जिन्नात है जो जिनने आके बताया है, मतलब ऐसे बैठे बैठे किसको, हमें तो नहीं ख्वाब आ जाता कि किसी का क्या मसला, सारा कुछ उसको बता दिया। कहने का मकसद ये कि जो साथ ही आए हुए हैं ना, इनको अब पता चल जाए कि मैं तो क्या, मेरी बात है, और फिर ये भी मेरे पास आएंगे, सब पे धाक बैठ जाएगी ना, और क्या होता है इसका मकसद। तो ये इस किस्म के काम करते हैं, इसी तरह किसी ने मुझे बताया, यही न्यूयॉर्क सिटी में, यहाँ पे भी ऐसी चीजें आ गई कि कोई जा रहे थे, एक आदमी जल्दी जल्दी साथ चलने शुरू हो गया, कहने लगा क्या इंडिया से हो, मैंने कहा नहीं पाकिस्तान से हो, हाँ अच्छा, बहुत परेशान रहते, बहुत फिक्र करते, अब ये तो हर कोई परेशान रहता है, हर एक की फिक्रें, अच्छा तुम कारोबार करने लगे हो, एस नाम का तुम्हारे घर में कोई है और एस नाम का बंदा तुम्हें कोई राबता करेगा, उसके साथ ना करना, वो बहुत तुम्हें नुकसान देगा, ऐसी ऐसी बातें करके क्या बताना चाह रहे दूसरे को। मुझे बड़ा चीज पता है, इंसान कहेगा हाँ भाई वाकई मेरे मसले, अच्छा आप बताएंगे क्या, वो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इग्नोर कर दें इनकी बातों में ना। तो ये इसका मतलब उनके पास जिन्नात हैं, जो जिन्होंने आके कोई खबरें दी हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर जाके खबरें सुनते हैं, आते हैं उसमें झूठ सच मिला के लोगों को बताते हैं। या कोई ऐसा भी होता है कि जो जो अपने पास आने वाले को जो जिसका मसला होता है उसके कागज पे कुछ चीजें लिखता है जिनकी कुछ समझ नहीं आती ये क्या है, और फिर उनको कहता पानी में मिला के तो पिए। तो ये सब चीजें पता चलती हैं कि ये जादू से रिलेटेड है। और जादू के तोड़ के लिए बाज लोग क्या करते हैं, वो फिर जादूगर के पास चले जाते। भाई वो आप सोचें, हमें नफरत होनी चाहिए जादूगरों से कि वो कितने गलीज काम करते हैं और फिर भाग भाग के जादूगरों के पास जा रहे हैं। नहीं, वो जादू हो गया, अब इसका तोड़ जादू से ही होगा। नहीं, अल्लाह के कलाम से। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादूगर ढूंढा था कोई? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हल्का सा एक असर हुआ था कि भूल जा रहे थे, जो काम किया था उसको भूल जाते थे कि ये किया था कि नहीं किया था, अपनी बीवियों में से उनके पास गए थे कि नहीं गए थे। और अल्लाह ताला ने कलाम उतारा इस चीज से निकालने के लिए। ये नहीं फरमाया कि जाएं आप भी किसी जादूगर के पास जाके इसका तोड़ कर आए। हम कहते नहीं, बहुत बड़ा जादू है, काला जादू हो गया, आप इसका तोड़ जो है फलाने बड़े जादूगर के पास ही होगा। अगर किसी को कह दें सूरह फलक और नास पढ़े तो वो तो समझते हैं ऐसी वो हमें बहुत ही छोटी सी चीज बता दी। हालांकि अल्लाह ताला ने बता दिया, हमें समझा दिया कि अल्लाह की पनाह में आओगे तो बच सकते। तो ये जब इससे इसका इलाज अगर करना हो तो एक तो इंसान ये करे कि देखिए गुनाहों को छोड़ना होगा, कबीरा गुनाह जो है इनको छोड़ना होगा, नमाज को पाबंदी से पढ़ना होगा, नशे वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करनी, म्यूजिक वगैरह घर से हटाने होंगे, तस्वीरें या स्टैचूज हटाने होंगे। यानी ये चीजें ना जहां से जिनसे रहमत के फरिश्ते नहीं आते, बेपर्दगी अगर करते हैं तो उससे निकलना होगा, सुबह शाम के अजकार पढ़ने होंगे। तो इसके लिए जो जादूगर जब किसी के ऊपर जिन का करना चाहते हैं ना कि कोई जिन इसके ऊपर हावी हो जाए या इसमें दाखिल हो जाए, तो वो हर वक्त में दाखिल नहीं हो सकता। जो कोई इंसान प्रोटेक्टेड होगा उसमें नहीं दाखिल हो सकता। और इंसान कब अनप्रोटेक्टेड होता है, जब वो अल्लाह के इज़्कार को छोड़ देता है, जब वो किसी ऐसी इमोशनल उससे गुजर आता है, मसलन बहुत शदीद गुस्सा जब आए ना तो इंसान रूहानी तौर पे कमजोर हो जाता है, तब वो एंटर होता है। या बहुत गफलत हो या बहुत खौफ हो, ये टाइम्स होते हैं जब इंसान अंदर से कमजोर हो जाता है तब वो एंटर होता है। हर एक के ऊपर नहीं असर कर सकती ये चीजें, आपको पता है हर एक पे नहीं असर करती, इसलिए हर एक पे नहीं असर कर सकती। जैसे कि आप देखें वायरस फैलता है, हर एक तो नहीं बीमार हो जाता, जो लोग कमजोर होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वही बीमार होते हैं ना। जब आप रूहानी तौर पे कमजोर होंगे तो ये चीजें आपके ऊपर असर करेंगी, और जब आप अंदर से स्ट्रांग होंगे तो फिर ये चीजें नहीं असर कर सकती। इसके बचाव के तरीके क्या हैं, कोशिश करें कि वुजू की हालत में रहें, अल्लाह का जिक्र जुबान पे जारी रखें, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र होता है शैतान भाग जाता है। रात को भी वुजू करके सोएं, इसी तरह आप तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करें, जब बाथरूम में जाएं तब भी बाथरूम की दुआ पढ़ें, क्योंकि ये खबीस जिन्नात और ये जो हैं ये वहां पे होते हैं, नापाक जगहों को पसंद करते हैं, नापाक लोगों को पसंद करते हैं। इतनी गंदगी में अगर आप रहेंगे, घर गंदा है, बॉडी गंदी है, तो कि ये चीजें आएंगी, कपड़े गंदे रहते हैं, माहौल आपने सारा गंदा रखा, तो फिर ये चीजों पसंद करती हैं ऐसी जगहों को। इसलिए अपनी सफाई रखें, अपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, अपने गैर जरूरी बालों को साफ करें, और जब आपके पीरियड खत्म हो जाए तो जल्दी से जल्दी शावर लेकर नमाज वगैरह अपनी शुरू करें, गंदगी में ना घूमते रहें। जब आपकी हैज के दिन है तब भी हिफाजत की दुआएं पढ़नी, नहीं छोड़नी, ये नहीं कि बस सारा कुछ छोड़ के आप छुट्टी हो गई है। इसी तरह आपको पता है सूरह बकरा, इससे शैतान घर में दाखिल नहीं होता, तो ये पढ़ें। جب میاں بیوی آپس میں تعلق کریں تو اس وقت بھی اس کی دعا، مسنون دعا جو سکھائی گئی ہے وہ پڑھیں، اور جو جو ہمیں اس میں بتایا گیا ہے کچھ آپ کو میں بتاتی ہوں. ویسے تو ہمارے کو پتہ ہے اس میں صبح شام کے اذکار میں تمام ہی ذکر آ جاتے ہیں، مگر آج میں آپ کو کہوں گی 5 ذکر. اگر جو لوگ بہت زیادہ کچھ نہیں پڑھ سکتے، اور صرف اس لیے نہیں پڑھتے، اتنا ہم سے نہیں کیا جاتا، تو یہ 5 اذکار ہے نا، یہ کبھی بھی نہ چھوڑیں. اور یہ زیادہ تر آپ میں سے لوگوں کو یہ آلریڈی یاد ہوں گے، یہ 5 آپ نے کبھی نہیں چھوڑنے. ان میں نمبر 1 ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی جو ہے یہ صبح بھی پڑھنی ہے، شام کو بھی پڑھنی ہے. صبح کو پڑھیں گے تو شام تک حفاظت ہے، شام کو پڑھیں گے صبح تک حفاظت ہے. تو یہ لازمی بنا لیں کہ یہ چاہے چلتے پھرتے ہی پڑھیں، لیکن پڑھنی ہے مجھے فجر کے بعد اور عصر کے بعد. نمبر 2 چیز، معوذات. معوذات کیا ہے؟ ایک معوذہ تعین ہے اور ایک معوذات. فرق سمجھ آتا ہے؟ معوذہ تعین کیا ہے؟ تعین یا نون سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ دو، دو کا معنی، یعنی فلق اور ناس. اور معوذات کیا ہیں؟ فلق بھی، ناس بھی، اور سورہ اخلاص بھی. ان کو بھی صبح اور شام 3-3 دفعہ پڑھنا ہے. یہ سمجھ لیں ایسے جیسے پرسکرپشن لکھا رہی ہوں نا میں آپ کو، ڈاکٹر پرسکرپشن دیتا ہے اتنی دفعہ یہ 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 گولی لینی ہے. تو آپ نے نہیں، کچھ بھی نہیں آپ پڑھ سکتے نا، آپ نے یہ 5 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ضرور کرنی ہے. اچھا یہ ایک ہو گیا، کیونکہ ان سے بھی جس نے معوذات پڑھ لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے کافی ہو گئی. تیسری چیز، چوتھا کلمہ. چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں نا ہم، ویسے تو چوتھا کلمہ کوئی سنت میں اس کو چوتھا کلمہ نہیں کہا گیا، مگر الفاظ صحیح ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی آپ صبح شام کی دعاؤں میں دیکھ لیں گے. یہ 10 دفعہ، ویسے تو 100 دفعہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن کم سے کم 10 ٹائم صبح اور 10 ٹائم شام، تو یہ قلعہ بن جائیں گے اس کے لیے. نمبر 4، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ بھی سب کو آتا ہوگا، صبح کو پڑھ لیں تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، ٹھیک ہے؟ اور شام کا پڑھیں گے تو صبح تک. اسی وہ بھی 3 دفعہ، اسی طرح 3 دفعہ اعوذ بکلمات اللہ التامات. ایک تو من کل شیطان وہامات وہ بھی ہے، تو لیکن دوسرا بھی اعوذ بکلمات اللہ التامات من، مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، سامنے نہیں ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. ہر چیز کے اس سے، ورنہ ویسے ہے من کل شیطان وہامات من کل عین لامات. جب آپ نے کہیں جانا ہو نا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ نظر بد تو نہیں ہو جائے گی، اب ڈرتے ڈرتے ہم کہتے ہیں جانا ہی نہیں ہم نے، ہائے وہ مجھے نظر لگا دے، تو آپ کس کس سے چھپ کے بیٹھیں گے؟ آپ کو کیا پتا کون نظر لگائے کون نہیں لگائے، کبھی کبھی تو پیاروں کی نظر لگ جاتی ہے، تو کیا کریں گے؟ سب سے چھپ کے بیٹھ جائیں پھر گھر میں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو پھر وہ پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات. اور دوسری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں جس کو جو میں پڑھنے کو کری، وہ تو من شر ما خلق ہے نا، وہ تو ہر ایک مخلوق کے شر سے جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اس میں سب ہی آ گیا نا، شیطان بھی آ گیا، یہ بھی آ گیا، تو اب ڈرنے کی بات نہیں ہے، وہ نظر لگائے گا، وہ ایسے کہہ دے گا، وہ کر دے گا، تو پھر الحمدللہ یہ آپ کے لیے حسد سے بچنے کے لیے بھی، نظر بد سے بھی، اور کیا نام ہے، جادو وغیرہ سب کی چیزوں سے آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 چیزیں، یہ سمجھ لیں گے 5 میرے لیے گولیاں ہیں، یا 5 میرے ویکسین ہیں، یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، ان 5 کو نہیں چھوڑنا، اور یہ یاد کر لیں. جو اگر نہیں کسی کو آتی تو، ادروائز مجھے لگتا ہے تو سب کو ہی آتی ہوں گی، کہ یہ ہم نے ضرور کرنا. اچھا جو ان کے علاج میں نا ایک کچھ چیزیں ویسے بھی جو بتائی گئی ہیں، وہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ 7 اجوا کھجوریں کھانے کو فرمایا، تو وہ اجوا کھجور کھا لیں 7، تو اس دن کسی قسم کا زہر یا جادو نہیں نقصان دے گا اس دن، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس دن کے لیے ہے. مگر اچھا اسی طرح یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بیری کے پتے لے کر اگر کسی کے اوپر ہو ہی گیا ہے، اول تو پہلے سے ہی اپنا انتظام رکھیں، پہلے سے ہی ایسی چیزوں کی حفاظت رکھیں. دیکھیں آپ سردی میں جانے لگتے ہیں نا تو آپ جیکٹ پہنتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں نا اپنی، क्या बात है कि हम ऐसे माहौल में रहते हैं, हमें पता होता है कि कुछ लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर सकते हैं, हमारे इर्द गिर्द वो हैं। अगर ऐसा कुछ भी शुबा है तो पहले से इंसान हिफाजत रखे ना। तो अगर लेकिन हो गया है तो फिर आप बेरी के साथ पत्ते लेके सिलबट्टे पे कूट लें, पानी मिला लें उसमें, फिर आयतल कुर्सी पढ़ के इस पे दम करें और जिस पे भी जादू किया गया उसको 3 घूंट पिला दें और बाकी पानी से उसको गुसल दे दें। ये आपको इब्ने कसीर में भी मिल जाएगा। और सूरह फलक और नास तो आपको पता है कि उस जैसा तो कोई तावीज है नहीं और ना ही आयतल कुर्सी जैसा कोई तावीज है, तो ये तो काफी है इंसान को, ये दूर कर देती है शैतान को। ये चीजें कुछ मैंने चाहा कि आपको बता दूं। और ये चीज खास तौर पे किस लिए करते थे, दरमियान में फूट डालने के, मियां और बीवी के। आपको पता है कि ठीक है और भी बहुत सारे बुरे काम हैं जिनको शैतान कराता है या जिनसे शैतान खुश होता है, लेकिन सबसे ज्यादा शैतान किस चीज से खुश होता है, मियां बीवी में फूट डाला। क्योंकि मुस्लिम की हदीस में हमें यह पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि शैतान अपना अर्श जो है वो भी, वो जो बड़ा इबलीस जो शैतान है वो भी तो इनका लीडर है ना, वो तो इनका बादशाह है, तो वो शैतानों के आगे अपना थ्रोन लगाता है पानी पे, फिर अपने लश्करों को बहकाने के लिए भेजता है। सबसे ज्यादा उसके नजदीक जो मर्तबे वाला है, सबसे ज्यादा उसके नजदीक जो बहुत बड़ा हुआ है फितने में, यानी जिसने सबसे बड़ा कारनामा किया है, वो कौन होता है उसके नजदीक, वो जो आगे कहता है मैंने मियां बीवी के दरमियान झगड़ा डला दिया और उनके अंदर जुदाई करा दी। सब आके अपने अपने कारनामे बताते हैं, मैंने सारा दिन में ये किया, मैंने ये किया, वो किसी ने कुछ कराया होता, किसी ने कुछ कराया होता, तो सारे बुरे ही काम होते हैं ना। लेकिन जो आके कहता है ना कि मैंने मियां बीवी में झगड़ा करा दिया और जुदाई करा दी, उसको वो गले लगाता है, कहता है तूने बहुत बड़ा काम किया, उसको अपने पास बिठा लेता है, उसका मर्तबा बढ़ जाता है। क्यों? इसलिए कि इससे नस्लें खराब हो जाती हैं। आपको पता है जहां पे ब्रोकन फैमिलीज होती हैं वहां पे बच्चों की नफसियात पे क्या असर पड़ता है, वहां पे दो खानदानों के दरमियान कैसी दुश्मनी पैदा हो जाती है। वो उसके बहुत फार फ्लंग इफेक्ट्स होते हैं, छोटे नहीं होते। इसलिए ये इतना बुरी चीज है। और माजरत के साथ के कुछ लोग जादू नहीं कराते मगर वो वही काम करते हैं जो ये जादूगरों के जरिए कराते हैं ना, वो काम वो वैसे ही कर रहे होते हैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। कि मियाँ बीवी में अगर मोहब्बत है, प्यार है, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहते बस ये तो जोरू का गुलाम ही हो गया, बस पीछे पीछे फिरता रहता है मियाँ। तो भैया आपको क्या, अगर उन दोनों के दरमियान मोहब्बत है, वो आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, तो हमें क्या इससे। अब उस पे खुश होने की बजाय जेलसी इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि अब इसको किस तरह से किया जाए इस चीज का इलाज। कि अब जब देखें जादू भी क्या है, अल्फाज ही है ना, कुछ कलिमात ही है ना, जैसे आप किसी को डंडा मारें तो उसको चोट लगती है ना, इसी तरह अल्फाज की भी चोट होती है और अल्फाज के भी असरात होते हैं। जैसे आप देखते हैं बाज दफा कोई ऐसी तकरीर करता है कि लोगों में गुस्सा इतना भर जाता है वो मरने मारने पे उतर आते हैं, बाज कोई आप ऐसा बयान सुनते हैं आपके आंसू निकल आते हैं, बाज दफा आप किसी के अल्फाज सुनते हैं आपको हंसी आ जाती है। सब अल्फाज ही तो है ना, तो अल्फाज में तासीर होती है, अल्फाज ही का हेर फेर होता है जो जादू के कलिमात बनते हैं। और यही अल्फाज जब हम बार बार किसी के कानों में डाले जाएंगे तो वो भी यही असर करेंगे कि मियाँ बीवी में जुदाई हो जाएगी। अब बार बार किसी को यही सुनाते जाना तुम्हारी बीवी तो ऐसे करती है, और तो बच्चों का तो उसको कोई ख्याल ही नहीं, अपना तो कोई ख्याल नहीं करती, ऐसे तुम्हारी बीवी को खाना नहीं बनाना आता, देखो जरा कैसा बनाया, उसकी तारीफियां हर वक्त करते रहना, देखो घर कैसा रखती है, बिल्कुल इसको सलीका नहीं। अब आदमी जो होते हैं ना वो खुद शायद उस चीज को तवज्जो भी ना दे, वो तो सारा दिन का गया हुआ शाम को आया, जब उसको ऐसी बातें कहते रहेंगे तो वो क्या क्या उसके ऊपर असर हो, इन अल्फाज का भी तो असर होता है, उसको अपनी बीवी बुरी लगने शुरू हो जाती है। और हम कहते नहीं हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया हमने, मैं तो कुछ करती ही नहीं, मैं तो कुछ कहती ही नहीं। देखिए हम सब जो है ना, हम सब औरतें कहीं ना कहीं नंद है, कहीं ना कहीं देवरानी या जेठानी है, बाज हम में से सासी हैं, हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम देखें कि हम किस तरह से मियां बीवी, या हम किसी किसी जगह पे भी एक बेटी की माँ है, हम क्या बातें करते हैं जिससे कि दूसरे के लिए अपने स्पाउस की नफरत या उससे बेजारी पैदा हो जाए। हमें कोई जरूरत नहीं होती कि हम उनके उनको उनके हाल पे छोड़ दें। बाज तलाके ही, यकीन करें मेरे पास तो आते हैं ना मसले, में इसलिए ही आपको बता रही हूं, तलाकें नौबत पहुंचती इस वजह से जब फैमिलीज इन्वॉल्व होती है। वो बड़े अच्छे भले रह रहे होते हैं, खुद अपने मसले सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो फिर वो उल्टा सीधा कुछ करा ही देते हैं। तो जब हम एज अ नंद या एज अ देवरानी जेठानी या एज अ सास, जब हम कोई ऐसे कलिमात बोलते हैं, ऐसी बातें दिमाग में डालते हैं, भाई बहुत चहीता है, भाई को क्या है, भाई से इतनी हमदर्दी है, बेटे से इतनी हमदर्दी आए, मेरा तो लाडला बेटा, देखो क्या इसका ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, या हमें इस तरह की हम काम करने लगते हैं ना, तो आपस में उनके कोई मोहब्बत नहीं पैदा होगी, नफरतें ही होंगी। हाय मेरी माँ तो मेरी इतनी हमदर्द है, देखो जरा इसने वाकई मेरा ये हाल कर दिया। तो ये मोहब्बतें अपने पास रखें संभाल की, इनके जरिए मियाँ बीवी के दरमियान ना तफरीक डालें। अगर उनके दरमियान तफरीक पड़ती है तो हमने क्या काम किया, वो ही काम किया जो जादूगर करते हैं, सेम वो जादू के जरिए कर रहे हैं, हम अपने अपनी जली कटी बातों के जरिए कर रहे हैं, हम फूंकते रहते हैं दूसरे के कानों के अंदर, एक दिन तो वो उसको गुबार आएगा, वो जाके लड़ेगा, और लड़ेगा तो फिर वो भी आगे से लड़ेगी, या फिर हम बैठ के कहेंगे हाय हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। देखो इस तरह ही घर टूटते हैं, इसमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, सब अपने गिरबानों में देखें, किसी का ना कहें वो हाँ हाँ फलां भी तो ऐसे, नहीं अपने आप को देखें। मैं अपने भाइयों के घरों में कितना अमल दखल करती हूँ, अपने बेटों के घरों में, अपनी बेटियों के घरों में कैसा मेरा अमल दखल है, इससे उनकी आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, या तेरा मियां तो तेरा ख्याल ही नहीं रखती, कुछ नहीं देगा तुम्हें। इस तरह की बातें करने से फूट पड़ेगी, और कुछ नहीं होगा। अगर नफरत नहीं भी होगी तो स्टार्ट किससे होता है, एक दूसरे से बेजारी होने लगती है, दूसरे की वर्थ खत्म हो जाती है। तो अगर हम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात से भी परहेज करें। तो यहां पे क्या है, देख लें कितना बड़ा कुरान के अंदर ये बात आ गई है कि वो जादू के जरिए ये काम कराते थे, और शैतान का, मैं मुस्लिम की हदीस आपको सुना दी है कि शैतान किस चीज से सबसे ज्यादा खुश होता है, फिर भी हम यही काम करना चाहते हैं जिससे शैतान खुश होता है। एक प्रॉब्लम मेरे पास ये क्या आया था, भाई जो भी उसके घर में थे, सास या ससुर जो भी थे, उनको ये हो गया कि ये बच्चे को खाना तुम क्यों ज्यादा खिला रही हो, उसके ऊपर लड़ाई हो, जब वो टोकने लगे उसने आगे से कुछ बोला, उसके बाद शौहर बीच में कूद पड़ा, और उसके बाद वो लड़ाई हुई कि तलाक तक नौबत पहुंच गई, एक बच्चे को खाना खिलाने की उसके ऊपर ज्यादा खिला रही थी या कम खिला रही थी, ऐसी कोई बात थी। तो ये चीजों में बहुत केयरफुल रहना है हमें, बहुत ज्यादा, खास तौर पे जिस वक्त के हम घरों में ही रहते हैं और वहां पे हम सारा वक्त देख रहे होते हैं अपने सामने चीजों को, तब तब बहुत केयरफुल रहें, ये अपनी जुबान से कोई ऐसी बात ना अदा करें। तो इसीलिए तो आपको कहते हैं ना, कुरान पढ़ें, अपना ध्यान कहीं लगाएं ताकि ये इन चीजों का टाइम ही ना मिले। जो इन चीजों का टाइम मिलता ही तब है जब इंसान, जो काम की फायदेमंद चीज है जो हमारी आखिरत में काम आने वाली, उसकी तरफ तवज्जो होती नहीं, तो फिर जाहिर है इधर उधर नजर रखेंगे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर से आ रहा है, ये अल्लाह ने हमसे नहीं सवाल करने, ना कब्र में हमसे सवाल होने कि आपके घर में आपकी बहू या आपकी भाभी या आपकी देवरानी जिठानी क्या करती थी, उनकी रिपोर्ट दे, ये मेरे से और आपसे सवाल नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम अपनी आखिरत संवारने के लिए अपने वक्त को कीमती जानते हुए इसमें हम कुछ फायदेमंद चीज अपने लिए करें, ना कि स्पाइन में अपनी जिंदगी गुजारते। तो फैतालमुना मिनहुमा मा युफर्रिकुना बिही बैन अलमरीज व ज़ौजी व मा हुम बिदारीना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, हालांकि वो नहीं नुकसान देने वाले किसी इसके साथ किसी को भी मगर अल्लाह के इज्जत के साथ। अगर वो ये सोचते हैं कि जादू चल गया, जैसे मैंने आपको बताया लोग सोचते हैं जादू जादू बहुत बड़ा जादू है, ये तो किसी से भी नहीं हो सकता, तो ये याद रखो इतनी डरने की जरूरत है, आए मुझ पे आप कोई जादू ना कर दे। कई लोग बेचारे इसी में डरते रहते हैं, अब मेरे पर जादू ना हो जाए। भाई मोमिन का ईमान क्या होना चाहिए, अल्लाह के इज्जत के बगैर कोई चीज नहीं नुकसान दे सकती मुझे ना? और अल्लाह की पनाह में आओगे तो किसी चीज की क्या मिजाल है कि वो कोई नुकसान दे। जब आप एक बड़े किले में दाखिल हो गए जो बहुत मजबूत है, तो वो शैतान तो बाहर ही रह गया। तो किले में जाना आपका काम है कि आप अपने लिए हिफाजत के लिए ये दुआएं पढ़ें ताकि शैतान बाहर ही रह जाए और आपके गिर्द एक हिसार हो जाए। अब आप अल्लाह की हिफाजत में आ गए। क्या आयतल कुर्सी जब पढ़ता है कोई इंसान, तो अल्लाह ताला फरिश्ता नहीं मुकरर कर देता उसके लिए हिफाजत के लिए? रात को पढ़ेगा सुबह तक फरिश्ता उसके साथ हिफाजत के लिए रहेगा। तो अल्लाह ने फरिश्ता मुकरर कर दिया और आपको क्या चाहिए, आपको तो बॉडीगार्ड मिल गया, अब डरने की क्या बात है? ये पढ़ पढ़ के भी डरते रहना, इसका मतलब है कि आपको कलिमात के ऊपर यकीन नहीं। आप पढ़ें और उसके बाद मुतमईन हो जाए, आप कोई चीज नहीं मुझे नुकसान दे सकती, ना कोई नजरे बद तो ना कोई जादू तो ना कोई ऐसी चीज। وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, और वो सीखते थे वो चीज जो उनको नुकसान देती और नफा नहीं देती, नफा नहीं नफा देता उनको, ये वो चीजें सीखते हैं जिसका नुकसान है। वो इतनी हमाकत है ना कि इंसान वो चीज ले रहा हो, पता चल जाए अगर हमें कि ये चीज मुझे नुकसान देगी तो इंसान कभी भी ना ले। लेकिन वो उनको अल्लाह की बातों पे यकीन नहीं है, इसलिए वो चीजें सीखते थे लेते थे किसी तरह, हमारी बस ख्वाहिशात पूरी हो जाए। आज भी क्या वजह है, लोगों को क्या पता नहीं है कि ये हराम है? किसको नहीं पता, फिर भी कैसे चल रहे हैं कारोबार इन लोगों के? मुसलमान मुल्कों में कैसे चल रहे हैं, जहां पे हर कोई मुसलमान है, कैसे चलते हैं उनके कारोबार? फिर भी वो भी सीखते हैं और लोग उनके पास जाते हैं और वो चीज लेते हैं जो नुकसान देती है, नफा नहीं देती। अल्लाह ने जब फरमा दिया कि नफा नहीं है इसमें, और हमें अगर कुरान पे ईमान है, देखें जो पहली आयत आपने सूरह बकरा में पढ़ी थी क्या थी, पहली बात जो पढ़ी थी क्या थी, ला रईबा फी, इस कुरान में कोई शक नहीं करना, कोई शक नहीं है इसके अंदर। तो फिर उस चीज को यहां पे लाके देखें कि अल्लाह ताला बता रहे हैं वो सीखते हैं वो चीज जो नुकसान देती है, उनको नफा नहीं होता इसमें, आपको नफा नजर आता है, नहीं नहीं इससे हमारा ये काम बन जाएगा। आपकी बात सच्ची है अल्लाह की, अल्लाह ताला फरमा रहा है इसमें नुकसान है नफा नहीं, और जो सीखने वाला है उसके लिए भी नुकसान है कि ऐसा नुकसान है। अब ये आगे देखते हैं, वलकद आलिमू, अलबत्ता तहकीक वो जानते थे, ये यहूद को पता था, जैसे आज हमें भी पता है, उनको क्या पता था, लमन इश्तराहु मा लहू फिल आखिरति मिन खलाक, जो इसको खरीदेगा उसके लिए आखरत में कोई हिस्सा नहीं है, इसलिए कि ईमान ही चला गया। जब कुफर में एंटर हो गए तो फिर क्या आखरत में हिस्सा होगा, तो यानी आखरत अपनी बर्बाद कर लेगा अगर कोई ये काम करेगा। अगर दुनिया में कुछ छोटा सा फायदा हो भी जाता है, आखरत ही चली गई तो क्या मिला, फिर भी लोग इसके पीछे जाते, नफा नहीं है इसमें नुकसान है, ये दिमाग में बिठा लें बात। इन लोगों के पास जाना, वो किसी किस्म की भी चीजें कर रहे हैं, कोई भी चीज कर, अल्लाह का दर ही एक ऐसा दर है जिससे मांगो और वहीं से मांगना, और अल्लाह को ही कहना अल्लाह हमने तुम्हारे पास कोई और नहीं सिवाय तेरे, हमने तो तुझी से मांगना और यहीं से लेना। तो मोमिन तो ऐसा होना चाहिए ना कि वो अल्लाह से मांगा थोड़े दिन फिर उसके बाद कहीं और चल पड़े, वहां नहीं दाल गली कहीं और चल पड़े, ये क्या ईमान है? तो ऐसे लोगों का फिर आखरत में तो कोई हिस्सा नहीं, उनकी आखरत तो खत्म हो गई। वला बिसा मा शरू बिही अन्फुसहुम, और कितना बुरा है जो उन्होंने बेच डाला साथ इसकी अपनी जानों को, यानी कितनी बुरी चीज है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों का सौदा कर लिया, जादू सीखने के शौक में अपनी जानों को बेच दिया, जादू कराने के शौक में कि हमारी मर्जी का हो जाए जैसे हम चाहते हैं। आपको वाकई वो कहते हैं ना कि यू हैव टू सेल योर सोल टू द डेवल, तो वो वाकई बात सही है, और जादूगर यही करता है, अपना सोल बेचता है डेवल को पता नहीं जिसने भी ये कही होगी वो उसने इस तरह से कही है या नहीं, लेकिन ये हकीकत है। वो उसका सोल अल्लाह के लिए नहीं जाता, डेवल के लिए ही होता। कितना घटिया सौदा उन्होंने किया। लहुकानु यालमून, काश के वो जानते होते, काश के उनको इल्म होता। लेकिन अल्लाह ताला ने तो फरमाया वलकद आलिमो, वो तो जानते ही थे। फिर यहाँ पे क्यों कहा गया लहुकानु यालमून, काश वो जानते थे। वो तो जानते ही थे कि इसका आखरत में कोई हिस्सा नहीं है। फिर ये आपसे सवाल है कि फिर क्यों कहा गया काश वो जानते होते। इसलिए कि वो ये जानना था ना उनका, वो सिर्फ जाहिरी जानना था। जैसे हमें भी आज पता है जादू हराम है, शिर्क हराम है, हमें क्या नहीं पता कि कयामत आनी है, कयामत में हिसाब किताब है, ये जवाब देना पड़ेगा मुझे। जानते हैं ना सब, सब जानते हैं ना। फिर उसके बाद क्या, वही काम करते हैं। तो ये ऐसे ही अल्लाह के नजदीक जैसे आप कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उस जानने का क्या फायदा अगर कयामत के दिन फिर खड़े हों और फिर ये क्या हो गया। जानना तो वही फायदामंद है ना जो अमल में आए, जो अमल को बदल दे। और देखिए अब मसलन झूठ का हमें पता है कि वो भाई गुनाह है, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं, तो फिर ऐसे इल्म का क्या फायदा, ऐसे जानने का क्या फायदा, जिसका कोई कोई हासिल ही नहीं है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, उस जानने का क्या फायदा। हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के सामने हिसाब किताब है, फिर भी हमें परवाह ही नहीं, फिर भी हम गाफिल हैं, गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस पता होने का क्या फायदा। कौन से मुसलमान को नहीं पता कि कयामत आनी, तो उस पता होने का क्या फायदा फिर बता। इसी तरह इनका था, उनको भी पता था कि आखिरत में ऐसा कोई हिस्सा नहीं, फिर भी जा जाके उन्हीं से सीखते थे और यही काम करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया काश वो जानते होते, यानी उनको हकीकी इल्म होता है, इल्मे नाफे, जिसको हम दुआ भी करते हैं ना, लम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह इल्मे नाफे अता फरमाना मुझे, तो इल्मे नाफे काश इनको मिल जाता, काश ये वो ले लेते हैं जिससे इनकी जिंदगियां बदलती। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल, एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मिसाल के तौर पे हमें कहा जाए, आज अगर ऐलान होता है कि देखें जो कोई भी ट्रेन में आज खड़ा हो के न्यूयॉर्क तक जाएगा, जो खड़ा होके गया 1.5-2 घंटे का मसलन सफर आ करके गया, तो जब वहां वो पहुंचेगा ना, तो उसको एक घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, उसके बच्चों का जो भी फीस है वो पे की जाएगी, उसका जिंदगी भर का खर्चा उठाया जाएगा घर का, उसके बिल्स पे किए जाएंगे, उसका मेडिकल फ्री हो, सब कुछ उसका टेकन केयर ऑफ। मुझे बताएं कि हमारा हाल क्या होगा। लड़ लड़ के लोग खड़े होके जाएंगे, कहेंगे हमें तो इस पे सवार कर, तो बस हम तो खड़े होके ही जाएंगे, सीट है अभी तो तब भी नहीं हमने बैठना। क्यों? इसलिए कि वहां पे ये मिलेगा ही ना। हमें कहा गया इस छोटी सी जिंदगी में खड़े होके चले जाओ, यानी वो कर लो, थोड़ी सी मुशक्कत है ये बर्दाश्त कर लो, तो फिर हमेशा की जन्नत है। उसमें घर भी है, उसमें सवारियां भी हैं, उसमें सुकून भी है, उसमें खुशियां भी हैं, उसमें हर चीज टेकन केयर ऑफ है। लेकिन हमें क्या यकीन है इन वादों पे? तो होता तो फिर हम यहाँ की मुश्किलें हंसी खुशी ना बर्दाश्त कर लेते। अगर ये यकीन होता वाकई, तो फिर तो हम यहाँ पे जो भी हो रहा होता कहते कोई मसला नहीं, ये तो थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो जाके मुझे इतना कुछ मिल जाना। यानी यकीन नहीं है। लो कानू या आलमून, काश के वो जानते होते। जबकि वो हमें पता है सबको कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की जिंदगी ऐसी है कि जैसे समंदर में उंगली डबो और निकालो तो जितना पानी उंगली पे लगा, ये दुनिया की जिंदगी है, और जो समंदर है ये आखरत है। हमें सबको पता है, सबको ये हदीस आती है, और उसके बाद ये जो उंगली पे लगा हुआ पानी है, ये सी जिंदगी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, कभी जादुओं के पीछे जा रहे हैं, कभी उस टूने टोटके के पीछे, कभी फलां के पीछे, कभी हाय मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, कभी लड़ाइयां करा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अल्लाह की इताअत वो मुश्किल लग रही है, सुस्तियां कर रहे हैं, गफलत में पड़े हुए हैं, हाय कैसे करें, हाय होता नहीं है। छोटी सी जिंदगी में भी इताअत हमारे लिए इतनी मुश्किल है। हाँ गुनाहों से बचना, हाँ ये तो बड़ा ही मुश्किल। वो उस ट्रेन में बैठा हुआ तो कोई नहीं, खड़ा हुआ कोई नहीं कहेगा कि बड़ा ही मुश्किल है, कहेगा नहीं। अगर पता चल जाए ना कि ये सब कुछ मिलना है, तो लड़ेंगे, हमें खड़े होके जाना है। जैसे हिजरे उस्मत को चूमने के लिए लड़ते हैं लोग, कैसे आगे भीड़ लगी होती, कैसे धक्के देते, इस तरह हम लड़ने लगे। जैसे हमें पता चल जाए किस तरह कयामत के दिन जो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला नमाजी है, पहली सफ वाले को कितना अजर मिलेगा, दूसरी वाले। अगर ये दुनिया में पता चल जाए ना, लव कानू या अलमून, अब पता तो है लेकिन वो वाला पता नहीं है ना, वो पता चल जाए ना कैसा है, तो भी लड़े वहां पे, मुझे जगा दो। अगर ये पता चल जाए कि एक नेक औरत को क्या मिलना है वहां पे, और इतने नेक बनने के लिए रेस लगा दें, लेकिन यहाँ पे रेस किस में लगी हुई, शॉपिंगों में, कपड़े, जेवर में, इसमें हमारी प्रायोरिटीज ही और है ना। लव कैन हु या अलमून, ये हमारे लिए भी है। काश जानते होते, काश इल्म होता, पढ़ के भी इल्म नहीं है, हमारा हाल वही है, लकद अलिमु, वो तो जानते थे लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने फरमाया लव कान हु या अलमून। इल्म सिर्फ उसको आगे, फिर उसने अपनी प्रायोरिटीज बदल ली, उसने अपनी जिंदगी बदल ली, उसने जो डायरेक्शन थी वो उसने अपनी चेंज कर ली, और कहा नहीं आप ये इल्म लिया ना, अब इसके मुताबिक चलना, वो है जो असल इल्म वाला। बाकी बेइल्म है, जाहिल है, चाहे उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया हुए हैं ग्रेजुएशन में, चाहे ताज पहन के खड़े हो गए हैं, चाहे उनको हार पहनाए गए हैं, मेडल दिए गए हैं, वो जाहिल ही हैं, इसलिए वो इल्म का कोई फायदा नहीं। उस इल्म को क्या करना जो वहां पे जाके खड़े हों और उसी चीजों की अगर सजा भुगत रहे जिनका मना किया गया था। हाँ हमें पता तो था, फिर क्यों नहीं किया, बस नहीं किया।